नमस्कार भारत, तारीख 10 दिसंबर, दिन सोमवार, मैं हूं मानसी दाश। यमन में शांति बहाल करने के लिए बातचीत शुरू, क्या सुलझेंगी यमन की समस्याएं?
اذا خرجنا من هذه المشاورات بتقدم في هذه الخطوات خطوات
مناسبه دلی میں آج وپکشی دلوں کے نیتاؤں کی اہم بیٹھک کیا ہو سکتے ہیں مدے
مجھے لگتا ہے کہ جو 11 تاریخ کو وپکش کی میٹنگ ہے وہ ایک اسٹریٹجی سیشن کے روپ میں ہوگا کس کس مدے پہ گھیر سکتے ہیں بھاجپا کو
ساتھ ہی ہوگی وسط اللہ خان کی ڈائری
ہم سے اچھے تو دونوں دیشوں کے وہ مچھیرے ہیں جن کی ناؤ سمندر میں ذرا سی ادھر سے ادھر ہو جائے تو مفت میں گجرات یا کراچی کی جیل میں پہنچ جاتے ہیں
سنوائیں گے ساپتاہک کارکرم کھیل اور کھلاڑی بھی لیکن پہلے وشو سماچار
بی بی سی سماچار دلنواز پاشا سے کناڈا میں گرفتار کی گئی چین کی ہواوے کمپنی کی مکھیہ وتیہ ادھیکاری نے ضمانت ارجی داخل کی ہے مینگ وان جاؤ کی گرفتاری نے دنیا بھر کے شیئر بازاروں کو پربھاوت کیا ہے امریکہ کے آگرہ پر کناڈا نے بیتے سپتاہ وینکوور میں انہیں گرفتار کیا تھا امریکہ کا آروپ ہے کہ وینگ نے ایران پر لگے پرتبندھوں کا الگھن کیا ہے عدالت میں داخل عرضی میں مینگ کی اور سے کہا گیا ہے کہ وہ نردوش ہیں اور یدی انہیں امریکہ پرتیارپت کیا جاتا ہے تو وہ آروپوں کو چنوتی دیں گی اسی بیچ چین نے کناڈا سے انہیں رہا کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کناڈا اور امریکہ کے خلاف کارروائی کرنے کی چیتاونی دی ہے امریکہ کے ویاپارک پرتینیدھی نے کہا ہے کہ چین اور امریکہ کے بیچ ویاپار یدھ کو ختم کرنے کے ادیشے سے کی جا رہی وارتا کو 1 مارچ سے آگے نہیں بڑھایا جائے گا رابرٹ لائٹ ہازر نے کہا ہے کہ یدی کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو امریکہ چین پر اور ادھک ٹیکس لگائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں امید ہے کہ کناڈا میں ہوئی مینگ وان جھاؤ کی گرفتاری کا ویاپارک وارتا پر کوئی اثر نہیں ہوگا سی بی ایس سے بات کرتے ہوئے لائٹ ہائزر نے کہا جب میں امریکہ کے راشٹرپتی سے بات کرتا ہوں تو وہ 1 مارچ سے آگے جانے کی بات نہیں کرتے ہیں وہ سمجھوتا کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر سمجھوتا ہو تو اگلے 90 دنوں میں ہو جائے آرمینیا میں کرائے گئے آکسمک چناو عام چناؤوں میں کارکاری پردھان منتری نکول پاشنیان کی پارٹی مضبوط بڑھت بناتی دکھ رہی ہے پارٹی نے اب تک گنے گئے 60% مت حاصل کیے ہیں اور اپنی نزدیکی پرتدوندی سے کافی آگے ہے شانتی پورن کرانتی کے ذریعے ستا حاصل کرنے والے پاشنیان نے آرمینیا کی ارتھویوستھا میں سدھاروادی قدم اٹھانے اور بھرشٹاچار سے نبٹنے کے لیے سنسد میں بہومت حاصل کرنے کے ادیشے سے اچانک چناؤ کروائے تھے راجدھانی یریوان میں موجود بی بی سی سنواداتا کے مطابق عام لوگوں میں چناؤ کو لے کر اتساہ ہے اور انہیں چناؤوں کے نشپکش ہونے کی امید بھی ہے دکشن امریکہ کے سب سے بڑے فٹ بال مقابلے دا کوپا لبریٹاڈوریز کو ریور پلیٹ فٹ بال کلب نے جیت لیا ہے اترکت سمے تک کھچے مقابلے میں ریور پلیٹ کلب نے ارجنٹینا کے بوکو جونیئرز کلب کو 3-1 سے ہرا دیا یہ مقابلہ اسپین کی راجدھانی میڈرڈ کے برنابیو اسٹیڈیم میں کھیلا گیا بیتے مہینے بیونس آئرس میں ریور پلیٹ کے پرشنسکوں نے بوکا کی ٹیم بس پر حملہ کر دیا تھا جس میں کئی کھلاڑی بھی گھائل ہو گئے تھے اس کے بعد میچ میڈرڈ میں کرانے کا فیصلہ لیا گیا تھا پیرو میں ہوئے جنمت سنگرہ کے ایگزٹ پول کے مطابق دیش کے لوگوں نے راشٹرپتی مارٹن وسکارا کے بھرشٹاچار ورودھی سدھاروادی ایجنڈے کو مانیتا دے دی ہے استھانیہ میڈیا کے مطابق لوگوں نے نیائک سدھاروں وتیہ قانونوں میں بدلاؤ اور نیتاؤں کے چناؤ لڑنے کو سیمت کرنے کے سمرتھن میں متدان کیا ہے پیرو میں بھرشٹاچار کے ورودھ میں کئی بڑی ریلیاں نکالے جانے کے بعد یہ جنمت سنگرہ ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے سنسد کے دوسرے سدن کو پنرستھاپت کرنے کی مانگ کو بھی نکار دیا ہے جنمت سنگرہ میں شامل ایک پیرواسی نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ جنتا بھرشٹاچار کو لے کر اور ادھک جاگرک ہو گئی ہے اور اس سے نبٹنا بے حد ضروری ہے آج ہم راشٹرپتی وسکارا کے ایجنڈے پر جنمت سنگرہ کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی سکاراتمک ہے سعودی عرب کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ استانبول میں سعودی دوتاواس کے بھیتر پترکار جمال خاشوجی کی ہتیا کے ابھیوکتوں کو ترکی پرتیارپت نہیں کیا جائے گا بیتے سپتاہ ترکی کی ایک عدالت نے سعودی کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے 2 نزدیکی لوگوں کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے بی بی سی سماچار
بی बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। 4 साल से गृह युद्ध से जूझ रहे यमन में शांति बहाल करने के लिए संघर्ष में उलझे दोनों पक्ष यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। गृह युद्ध के कारण यहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने उम्मीद जताई है कि अब इस संकट का हल निकाला जा सकेगा। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए, बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से।
यमन के गृह युद्ध में लड़ रहे दोनों पक्षों के बीच स्वीडन में सीधी शांति वार्ता चल रही है। इस दौरान दोनों ओर से बंदियों की अदला बदली को लेकर सहमति बन गई है। मध्यस्थ संयुक्त राष्ट्र और दोनों ही पक्षों की ओर से कहा जा चुका है कि इस वार्ता का मकसद 4 साल से चल रहे गृह युद्ध का तुरंत राजनीतिक समाधान करना नहीं है। हुती विद्रोही और सऊदी अरब समर्थित राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी के समर्थकों के बीच चल रहे इस गृह युद्ध में अब तक कई लाख लोग मारे जा चुके हैं और देश पर भुखमरी और तबाही का खतरा मंडरा रहा है। ईरान समर्थक हुती विद्रोहियों के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने कहा है कि यदि इस वार्ता में बात आगे बढ़ती है तो उनका समूह सऊदी अरब समर्थित राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी की सरकार के साथ शांति वार्ता को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर हम यहाँ से बात को आगे बढ़ाकर जाते हैं, विश्वास पैदा करने में कामयाबी हासिल करते हैं और एक फ्रेमवर्क तय कर पाते हैं तो हम अगले दौर की शांति वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वार्ता के दौरान यमन की सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विमानों की सरकार के नियंत्रण वाले अड्डों पर जांच की शर्त के साथ खोला जा सकता है। शांति वार्ता के दौरान हूतियों की ओर से हवाई अड्डे को खोलना मुख्य मुद्दा रहा है। यमन के राष्ट्रपति के सलाहकार और वार्ता में शामिल अब्दुल अजीज जबारी ने कहा है कि सरकार भी राजधानी सना के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को चालू करना चाहती है। हम सना हवाई अड्डे को चालू करने की मांग का समर्थन करते हैं। यमनी नागरिकों के पास दुनिया के किसी भी देश की यात्रा करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी सशस्त्र समूह इसके खुलने से फायदा न उठा पाए। हम देख रहे हैं कि कौन इसे चलाएगा और एयर ट्रैफिक को नियंत्रित करेगा। स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में यह शांति वार्ता अभी जारी है। सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि अगले 2 दिनों में वार्ता से सकारात्मक खबर मिल सकती है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। ब्रिटेन की एक अदालत आज ये फैसला करने जा रही है कि भारतीय कारोबारी विजय माल्या को भारत में उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में उपस्थित होने के लिए प्रत्यर्पित किया जाए या नहीं। 62 साल के विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाए बिना भारत से बाहर चले जाने का आरोप है। हालांकि माल्या कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ भारत में मुकदमा राजनीतिक दुर्भावना के तहत किया गया है। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने बात की लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से।
जैसे कि आपको पता है, ये जो विजय माल्या का जो ट्रायल चल रहा है ना, ये लास्ट 12 मंथ से चल रहा है। तो आज ये एक्सपेक्टेशन है कि जो जज है ना, एमा आबुटनॉट, जो यूके की सबसे सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज है और इस केस की भी जज है, एक्सपेक्टेशन है कि आज फैसला सुनाएंगी कि क्या विजय माल्या को इंडिया एक्सट्राडाइट किया जाएगा। तो इसीलिए आज ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, ना कि विजय माल्या के लिए लेकिन इंडियन अथॉरिटीज के लिए भी, क्योंकि अगर आज जज ने उनको एक्सट्राडाइट करने का फैसला सुनाया तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी जीत होगी।
कई बार जिस स्टेट में वो कोर्ट को वो डिसीजन देने होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है या उसको फिर वो कोई नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी कोई ऐसा डिसीजन ना आए और कोई अगली तारीख सुना दे?
एक्चुअली अब ये केस जिस स्टेज पे है ना, ये अपने अंतिम पड़ाव पे है। तो अभी द ओनली थिंग जो पेंडिंग है इस केस में वो है वर्डिक्ट। एक बात हो सकती है कि कुछ घंटों में अचानक से कुछ नया एंगल निकल आए, कोई नया इंफॉर्मेशन निकल आए। अगर ऐसा हुआ तो शायद फिर जज बोल सकती है कि मुझे इस पे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसके ऊपर, इसके बेसिस पे शायद ये आगे तक जा सकता है। नाउ जब मैं सितंबर में गई थी कोर्ट में, जब ये केस का फाइनल हियरिंग हो रहा था, तब जज ने हमें प्री वॉर्न किया था कि दे मे बी अ पॉसिबिलिटी, जहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि मुझे मैं दिसंबर 10th तक मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए. यू नो, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है. तो उन्होंने हमें ये भी प्री वॉर्न किया था कि अगर 10th of December तक मैं रेडी नहीं हुई, पूरे पेपर वर्क और ये सब मैंने पढ़ाई पूरा नहीं किया, तो मैं आपको बोल दूंगी और फिर मैं नेक्स्ट ईयर ये पुश करूंगी. लेकिन अगर जज ने बोला कि उसने सब कुछ पढ़ा है, क्योंकि अब तक उसने दोनों साइड्स के यू नो स्टेटमेंट सब सुने हैं, एंड शी ओनली हैज नाउ टू मेक अ वर्डिक्ट, मेक हर माइंड अप एंड गिव अ डिसीजन.
विजय माल्या प्रत्यर्पण मामले में आगे क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ. आगे बढ़ते हैं. 11 दिसंबर यानी परसों, माफ कीजिएगा कल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे और इसी दिन से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होगा. इससे पहले दिल्ली में आज विपक्षी दलों के नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है. अधिकतर विपक्षी दलों ने इसमें शामिल रहने की सहमति जताई है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है. इस बैठक की अहमियत कितनी है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से संपर्क किया और उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या लक्ष्य हैं और इसमें मायावती की मौजूदगी या उनके गैर मौजूद रहने के क्या मायने होंगे.
इसके दो तीन मायने निकाले जा सकते हैं. एक तो 11 तारीख से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो रहा है. बजट सत्र तो होगा ही होगा, पर इसका भी काफी महत्व है क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिल्स वगैरह पास करना चाहती है सरकार. और विपक्ष को ये एक सुनहरा मौका है, एनडीए है, बीजेपी है, उसको घेरने का एक सुनहरा मौका मिला है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो 11 तारीख को विपक्ष की मीटिंग है वो एक स्ट्रैटेजी सेशन के रूप में होगा. किस किस मुद्दे पे घेर सकते हैं भाजपा को. एक तो राफेल डील तो है ही है उनके हाथ में, और ये जो उत्तर प्रदेश में खासकर जो बिल्कुल चरमरा गया है लॉ एंड ऑर्डर, वो भी एक मौका है इनको घेरने का. गांव में जो किसानों की हालत है, जो तकलीफें हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर होगा.
इसमें बसपा प्रमुख मायावती के आने या ना आने को लेकर शंका बनी हुई है. अगर वो आती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और नहीं आती है तो क्या असर पड़ेगा.
अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो ये विपक्ष की एकता के लिए एक बहुत ट्रैक्शन मिलेगा, और न आती है तो एक तरह से एक सेटबैक होगा विपक्ष की एकता के लिए. अब आम आदमी पार्टी ने, हालांकि उसका बहुत महत्व नहीं है संसद में अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आएंगे, तो एक सिंबॉलिक मीनिंग तो है ही है. लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी जो है ये विपक्ष एकता में, वो बहुजन समाज पार्टी की है. ना केवल उत्तर प्रदेश में उसकी महत्व है, पर एक तरह सारे नेशन में बहुजन समाज पार्टी की एक महत्व है. दलित पार्टी है, मायावती जैसे मजबूत नेता उसको लीड कर रहे हैं. विपक्ष की एकता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है, खासकर 2019 के चुनावों के पहले. अब हमें देखना होगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बिहार की, कुशवाहा जी की क्या रवैया होती है. हालांकि ये बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, पर इसका महत्व है कुशवाहा वोटों का, जहाँ तक सवाल है. अच्छा, अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर. अन्ना डीएमके का रवैया भी बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि वो भाजपा के साथ जाना चाहते हैं या न्यूट्रल रहना चाहते हैं. हालांकि भाजपा का बहुत महत्व नहीं है तमिलनाडु में. और ये फिर ये देखना होगा कि 11 तारीख के जो परिणाम आ रहे हैं चुनाव 5 राज्यों की, इस पे बहुत कुछ डिपेंड होगा कि शीतकालीन सत्र क्या मोड़ लेता है. अगर कांग्रेस 2 प्रदेश भी अगर जीत जाती है तो जीती मानी जाएगी. भाजपा 2 प्रदेश हारती है, मिजोरम और तेलंगाना को गिनती में नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भाजपा का कुछ है ही नहीं. अगर 3 में से 2 हारती है तो ये धक्का ही है भाजपा के लिए, विपक्ष को एक तरह से बोल्ड कर देगी. तो एक तो ये है कि एनडीए को अंदर से भी चुनौती हो सकती है और बाहर से विपक्ष तो घेरे ही घेरेगी.
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन, जिनसे बात कर रहे थे आदर्श राठौर. और अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहां नासिक में प्याज के किसान फसल के सही दाम ना मिलने से परेशान हैं. हालात ऐसे हैं कि 3 दिनों में 2 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। किसान प्याज की फसल बेच नहीं पा रहे हैं और अब मजबूर होकर वो आंदोलन की राह पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर ने बात की नासिक में मौजूद हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकरे से और पूछा कि आखिर हालात इतने खराब क्यों हो गए।
समस्या नासिक महाराष्ट्र में आ रही है, यही समस्या अभी एमपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में आ रही है। बम्पर फसल थी लास्ट रबी की और उसके बाद काफी अच्छी बारिश थी, तो 8 राज्यों के अलावा 26 राज्यों में ये प्याज की फसल आई है, तो बम्पर फसल है, ये एक रीजन है। दूसरा है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें प्याज को डिमांड नहीं रही है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही है। ये सारे रीजन है किसान को भाव नहीं मिल रहा है। प्याज तो है लेकिन मार्केट में लेने वाला कोई नहीं है।
ऐसी भी घटनाएं आई कि किसानों ने कहीं पे खुदकुशी कर ली और कहीं पे खुदकुशी करने की कोशिश की।
सिर्फ देखिए, इस साल बारिश काफी कम है महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली। जो किसान है उन्होंने स्टॉक की हुई प्याज थी जो मई और जून में स्टॉक की जाती है और किसानों को एक अपेक्षा रहती है कि सितंबर अक्टूबर और नवंबर का जो माह रहता है उसमें प्याज को काफी अच्छा रेट मिलता है क्योंकि काफी जगह इस वक्त प्याज अवेलेबल नहीं रहता है। लेकिन इस साल हुआ कि प्याज 1 और 2 रुपए से बिकी है, तो फायदा तो दूर ही, नुकसान ही उठाना पड़ा किसान को और उनके लोन्स रहते हैं। बेसिकली महाराष्ट्र का जो किसान है वो काफी अल्प भूधारक है, तो वो लोन लेता है, फसल बोता है, जैसे फसल के पैसे आते हैं ऋण चुकता कर देता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है और फिर किसान निराश होके खुदकुशी कर रहा है। जैसे नासिक के बागलान में पिछले 3 दिन में 2 आत्महत्या हुई है।
जी, सरकार का इस पे क्या कहना है? सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या वो कह रहे हो कि भाई हम ये कदम उठाने जा रहे हैं?
अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। किसानों की मांग है कि जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट को एक सब्सिडी दी जाए जैसे हर साल सरकार करती है। इससे पहले भी पिछले साल सरकार ने 250 रुपए पर क्विंटल सब्सिडी दी थी, लेकिन इस साल कोई भी ऐसा कदम नहीं दिख रहा है। मार्च महीने में प्याज की खरीदारी नाफेड ने की थी सरकार की ओर से, लेकिन अभी कोई भी कदम सरकार की ओर से अभी तक कोई दिख नहीं रहा है।
तो इस पे किसानों की अपनी मांगों को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, कुछ योजना है उनकी?
अभी तो आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जो 17 मंडियां है नासिक की उसमें से काफी सारे किसान एक जगह जमा हो रहे हैं। वहाँ मीटिंग होगी और आगे का क्या करना है प्रोटेस्ट वो तय किया जाएगा, तो उसमें एक बड़ा डिसीजन हो सकता है।
नासिक के प्याज किसानों की हालात पर जानकारी दे रहे थे प्रवीण ठाकरे। और अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज किन खबरों को पहले पन्ने पर जगह मिली है। अखबार लिए दिलनवाज पाशा स्टूडियो में आ गए हैं, जानते हैं उनसे धर्मसभा के सिवा क्या कोई और खबर भी है जो आज पहले पन्ने पर है।
जी, बाकी कई खबरें हैं लेकिन सभी अखबारों ने जो दिल्ली के रामलीला मैदान में धर्म सभा हुई उससे जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भगवा झंडे फहराते लोगों की भीड़ की तस्वीर सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है और शीर्षक भी एक जैसा ही है, भैया जी जोशी का बयान, भीख नहीं मांग रहे हैं, राम मंदिर पर अध्यादेश लाए केंद्र सरकार। लगभग सभी हिंदी अखबारों ने यही शीर्षक लगाया है और अंग्रेजी में भी शीर्षक इसी जैसा है। इसके अलावा बुलंदशहर में जो हिंसा हुई थी और उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर मारे गए थे उससे जुड़ी खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। एक अभियुक्त जीतू फौजी को कल जो है गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया और उसका बयान अखबारों ने छापा है। नवभारत टाइम्स में लिखा है, हिंसा की जगह पर था लेकिन इंस्पेक्टर पर गोली नहीं चलाई। और इसी से जुड़ी एक खबर द इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित की है जिसके मुताबिक बीजेपी के एक और विधायक ने मारे गए SHO की आलोचना की है। इससे पहले बीजेपी की एक विधायक जो अभियुक्त हैं उनका बचाव कर चुके हैं। वरना भारत टाइम्स ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत का साक्षात्कार छापा है जिसमें उन्होंने महिला अफसरों से जुड़ा एक बयान दिया है और कहा है सीमा पर महिला अफसर भेजने को तैयार, ध्यान रहें वहां से ताबूत भी आते हैं। और दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और आनंद की शादी को, इसकी प्री वेडिंग सेरेमनी उदयपुर में चल रही है और मुकेश अंबानी ने एक बयान में जो अपने मेहमान थे उनको संबोधित करते हुए कहा कहीं कुछ कमी रह गई है तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा, आखिर हम लड़की वाले हैं। और इसके जवाब में आनंद के पिता अजय पीरामल ने कहा हम लड़की वाले हैं, इस परंपरा को बदलना चाहते थे लेकिन मुकेश नहीं माने। बहुत आलीशान ये शादी हो रही है, दुनिया भर के मेहमान जुटे हैं, हिलेरी क्लिंटन भी आई हैं। और एक और शादी से जुड़ी खबर दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर है, लेकिन ये दुखद खबर है पटना से, जहां एक आईजी की बेटी ने अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। किशनगंज के डीएम से उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन लड़की किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी, अखबार ये बता रहा है, और इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। जी मानसी,
अखबारों की समीक्षा के लिए धन्यवाद दिलनवाज पाशा। एक लकीर के दो तरफ दो देश, भारत और पाकिस्तान, लेकिन लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना बेहद मुश्किल और कागजों में उलझा पेचीदा मामला है, लेकिन इस दिशा में हो रही कोशिशों को भी शुभ की नजर से देखा जा रहा है। वसीतुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी का इस बार का विषय यही है, सुनिए।
सुनते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त और सुहासिनी हैदर को कराची में किसी कॉन्फ्रेंस में आना था, वक्त पे वीजा नहीं मिला। मुझे मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एक कॉन्फ्रेंस का बुलावा था। मेरे ट्रैवल एजेंट ने कहा कॉन्फ्रेंस के न्योते की कॉपी और जिसने ये न्योता भेजा है उसके घर के एड्रेस पे आने वाले किसी बिल या आधार कार्ड की कॉपी मंगवा ले, मैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भर देता हूँ, आगे आपकी किस्मत। मेरा मेरठ जाने का जज्बा वहीं झाग की तरह बैठ गया। हमसे अच्छे तो दोनों देशों के वो मछेरे हैं जिनकी नाव समंदर में ज़रा सी इधर से उधर हो जाए तो मुफ्त में गुजरात या कराची की जेल में पहुंच जाते हैं, और जब उनकी संख्या 200-250 हो जाती है तो फिर दुनिया दिखावे के लिए मन्नत की चिड़ियों की तरह आज़ाद करके वागा अटारी के रास्ते वापस कर दिया जाता है। कुछ ही महीनों में गुजरात और कराची का पिंजरा फिर नई चिड़ियों से भर जाता है। सुना है करतारपुर बिना वीजे के आया जाया जा सकेगा, मगर इसके लिए भी सिख होने की शर्त है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उन यात्रियों में फिर भी शामिल ना होंगे, क्योंकि उन्हें शक है कि हो ना हो इस मेहरबानी के पीछे ISI का कोई बहुत बड़ा मंसूबा है। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बताना भूल गए कि ISI का प्लान ये है कि जिस तरह वैज्ञानिक लोग पक्षियों के पंजों से ट्रांसमीटर बांध के उन्हें उड़ा देते हैं, उसी तरह करतारपुर आने वाले सिख यात्रियों को तोहफे में जो पगड़ी या कड़ा दिया जाएगा उसमें जासूस ट्रांसमीटर फिट होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले नहीं हैं, हमारे अपने धार्मिक राजनेता मौलाना फजलुर रहमान को भी यकीन है कि करतारपुर कॉरिडोर जूश लॉबी के इशारे पे अहमदी समुदाय की सुविधा के लिए खोला गया है ताकि वो कादियान और रबवा आसानी से आ जा सकें। यानी पहले तो अहमदी लोग दाढ़ियाँ बढ़ाएंगे, ग्रंथ साहब के पाठ की प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए असली यात्रियों में घुल मिल जाएंगे और फिर करतारपुर से पाकिस्तान या भारत के अंदर बाढ़ फलांग के गुम हो जाएंगे। जब ऐसे ऐसे महान नेता ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझ जैसों को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि भारत यात्रा के लिए अपनी मुश्किलात का रोना रोऊं या इस पे मातम करूं कि बरखा दत्त और सुहासिनी हैदर को वक्त पे वीज़ा क्यों नहीं मिला। चलिए एक महान कवि इफ्तखार आरिफ के कुछ शेर सुनते जाइए। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढप तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। दिले ना मुतमईन ऐसा भी क्या मायूस रहना, जो खल्क उठी तो सब करतब तमाशा ख़त्म होगा।
वसीतुल्लाह खान की डायरी आपको कैसी लगी, हमें आपके खतों का इंतज़ार रहेगा। और अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में पांचवें और आखिरी दिन में आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी का खेल आगे बढ़ाया है। वो 557 रनों के भारत के कुल लक्ष्य का पीछा कर रहा है। फिलहाल मैदान में खेल रहे हैं पैट कमिंस और टिम पाइन। शॉन मार्श कैच आउट हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच के साथ साथ खेलों की दुनिया में और क्या क्या हो रहा है जानते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। एडिलेड में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन कल भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 323 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे। कल स्टंप के समय शॉन मार्श 31 और ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच 11, मार्कस हैरिस 26, उस्मान ख्वाजा 8 और पीटर हैंडस्कॉम 14 रन बना सके। दूसरी तरफ इससे पहले भारत की दूसरी पारी 307 रनों पर समाप्त हुई। एक समय तो भारत का स्कोर 5 विकेट खोकर 248 रन था। तब लग रहा था कि भारत बड़ा स्कोर खड़ा करेगा, लेकिन इसके बाद गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का काम आसान कर दिया। पहली पारी में शतक बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने दूसरी पारी में भी सर्वाधिक 71 रन बनाए, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने भी 70 रन बनाकर अपनी खोई फॉर्म तो हासिल की, साथ ही भारत को भी मजबूत दी। ऋषभ पंत ने एक दिवसीय अंदाज में बल्लेबाजी की और वो 16 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लायन ने 122 रन देकर 6 और मिचेल स्टार्क ने 40 रन देकर 3 विकेट झटके। भारत इस टेस्ट मैच में केवल 4 गेंदबाजों के साथ उतरा, जिसका बचाव किया तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने।
4 बॉलर हैं तो उस टाइम हम यही कोशिश करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी लेनी है कि इक्वली हम लोग छोटे छोटे स्पेल्स में आए, अच्छे फोर्स से बॉलिंग करें, क्योंकि फिर अगर सोचे कि 5 बॉलर होता तो वो थोड़ा नेगेटिविटी हो सकती है, तो वही हम लोग ने कोशिश करी थी कि कैसे विकेट लें।
और अब समीक्षा। क्वार्टर फाइनल तक तो पहुंची भारतीय हॉकी टीम, लेकिन अब
हॉलैंड 3 मरतबा विश्व कप जीत चुकी है, तो नेचुरली हिंदुस्तान का सामना एक कठिन टीम से होगा और हम लोगों को भी उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हॉलैंड के शॉट कॉर्नर स्पेशलिस्ट हैं उनको रोकना होगा। हॉलैंड की जो पेस बहुत तेज कर देते हैं ये लोग, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 5 गोल किए।
ये कहना है भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल का, जिन्होंने बातों ही बातों में बता दिया कि अगर भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से हुआ तो क्या होगा। दरअसल भुवनेश्वर में चल रहे विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कल पूल डी के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान को 5-1 से रौंदा, और क्रॉसओवर में अगर वो कनाडा को हरा देता है तो फिर क्वार्टर फाइनल में उसका सामना भारत से होगा। वैसे भारत ने भी बेहद दमदार खेल दिखाते हुए पूल सी में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता बेल्जियम थी, जिसने उसे वहां क्वार्टर फाइनल में हराया था। भारत ने बेल्जियम को 2-2 से बराबरी पर रोका, लेकिन भारत ने अपनी असली रंगत कनाडा के खिलाफ दिखाई और उसे 5-1 से हराया। हालांकि टीम ने रफ्तार खेल के 46वें मिनट के बाद पकड़ी। कमी कहां रही बताते हैं टीम के अहम खिलाड़ी चिंगलिन साना सिंह।
हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बेसिक स्किल थोड़ा कमी था, और हम लोग थर्ड क्वार्टर से एनर्जी वगैरह हम लोग का जो भी डिस्कस करता है बेसिक स्किल वगैरह और हम लोग कैसे फुल प्रेस करना है वही सब स्ट्रक्चर में खेल रहा था, उसके लिए गोल हुआ।
लेकिन लाख टके का सवाल, चैंपियन बनने का दम किस में है? जफर इकबाल किसी को कम नहीं आंकते।
ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इवन हॉलैंड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अर्जेंटीना ने प्रदर्शन अच्छा किया है, हिंदुस्तान का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये 5-6 टीमें हैं, मगर एज जो है यूरोपियन टीम का पल्ला भारी है।
तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जर्मनी ने सीधे सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर अपना दमखम दिखाया है। नजरें भारत पर कि उसका कारवा कहां जाकर पहुंचता है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
एडिलेड में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट जारी है और अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 162 रन चाहिए, उसके 4 विकेट ही रह गए हैं। हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम के आखिर में और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
कनाडा में गिरफ्तार की गई चीन की हुआवे कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी ने जमानत अर्जी दाखिल की है। मेंग वांजाओ की गिरफ्तारी ने दुनिया भर के शेयर बाजारों को प्रभावित किया है। आर्मेनिया में कराए गए आकस्मिक आम चुनावों में कार्यकारी प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान की पार्टी मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है। दक्षिण अमरीका के सबसे बड़े फुटबॉल मुकाबले द कोपा लिबर्टाडोरेस को रिवर प्लेट फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। अतिरिक्त समय तक खींचे मुकाबले में रिवर प्लेट क्लब ने अर्जेंटीना के ही बोका जूनियर्स क्लब को 3-1 के अंतर से हरा दिया। पेरू में हुए जनमत संग्रह के एग्जिट पोल के मुताबिक देश के लोगों ने राष्ट्रपति मार्टिन विस्कारा के भ्रष्टाचार विरोधी सुधारवादी एजेंडे को मान्यता दे दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस्तांबुल में सऊदी दूतावास के भीतर पत्रकार जमाल खाशोजी की हत्या के अभियुक्तों को तुर्की प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।